शांति, ओम शांति। बाबा की आज की मुरली है पढ़ाई और याद, पढ़ाई और याद। बाबा कहते हैं तुम्हें कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। मुरली नहीं मिलती है ये भी नहीं कह सकते हैं, अभी तो मुरलियां सहज मिल जाती है, व्हाट्सएप में मोबाइल में तो मुरली आज आई जाती है। इसीलिए कभी कोई बहाना नहीं दे सकता कि मुरली नहीं मिलती है। अगर एक दिन भी मुरली मिस की तो बाबा कहेंगे एब्सेंट, और एब्सेंट मार्क पड़ती रही तो क्या होगा। स्कूल में भी अगर बच्चा नहीं पढ़ता है, स्कूल नहीं जाता, एब्सेंट पड़ गया तो फिर उसमें भी फेल हो जाता अंत में, क्योंकि यही पढ़ाई है जो तुम बच्चों को शक्ति दे रही है। भगवान पढ़ा रहे हैं ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और हर मुरली में कोई न कोई ऐसा राज होता है, कोई नई बात होती है जो खुद के लिए भी लाभकारी तो दूसरों को समझाने लिए भी कितनी लाभकारी होती है। और अंत में तो यही काम आएगा, क्योंकि सारी पढ़ाई का सारी यही है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। और अंत में यही काम आएगा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। लेकिन उसका आधार है पढ़ाई, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं होगा, बुद्धि यहां वहां भटकती रहेगी तो फिर बाबा की याद भी नहीं रहेगी और अंत मती सोगते वही होगी। इसीलिए पढ़ाई पर बच्चों को बहुत ध्यान देना है। इसलिए कहा जाता है जहां तक जीना है वहां तक पीना है, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, अंत तक पीते रहना है। और अंत तक पीते रहेंगे तो बाबा की याद में ही शरीर छोड़ेंगे। तो आज की सारी मुरली इसी पर है, क्योंकि ब्राह्मण माना ही वो जो पढ़े और पढ़ाए। अगर न खुद पढ़ता न किसको पढ़ाता वो ब्राह्मण भी कहां, उसको ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों के लिए गायन है कच्छ में कुरम, उनके बगल में हाथ के नीचे सदा किताब रहती, कुरम माना किताब, तो कच्छ में कुरम, तो सदा अपनी नोटबुक जरूर होनी चाहिए। कुछ भी ऐसी पॉइंट आए नोट करो, करते हैं जो ऐसे करते हैं हाथ उठाएं, बहुत अच्छा, कहीं नहीं भी करते हैं। तो विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ वैसे भी कहते हैं इज द बेस्ट लाइफ, तो सदा ही मैं स्टूडेंट हूँ, सदा ही मैं ब्राह्मण हूँ, सदा ही मैं पढ़ाई पढ़ता हूँ, ये नशा भी रहे तो साथ साथ इतना आगे बढ़ेंगे जो अंत में यही काम आएगा। तो आज की बाबा की मुरली सारी इसी पर है, सुनते हैं बाबा की मुरली। आज 3/6/2024 है। मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को, कौन है बाप, विश्व का मालिक बनाने वाला, तो विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। लेकिन याद का आधार पढ़ाई है, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो, पढ़ाई पढ़नी है ना, तो किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे, कपाट माना दरवाजे, दरवाजे खुल जाएंगे बुद्धि के। उत्तर है पढ़ाई पर। कपाट तब खुलेंगे बुद्धि के जब पढ़ाई पर ध्यान देंगे। भगवान पढ़ाते हैं इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइन। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है। यहां वहां से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। एक बहन बता रही थी, गांव से आई थी, कहती थी मैं सेंटर पर जाती हूँ, महीने में एक ही बार जा पाती हूँ, तो जो मुरलियां होती है मैं ले आती हूँ और वही पढ़ती हूँ। ये नहीं कि आज की मुरली हमको चाहिए, क्योंकि बाबा की मुरली तो हमारे लिए सदा ही रिफ्रेशमेंट देती है, तो आज की मुरली हमें चाहिए, बाकी ये पुरानी हो गई ऐसे नहीं, क्योंकि हर मुरली में कुछ न कुछ ऐसी नई बात है। तो बाबा कहे यहां वहां से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे, बुद्धि के दरवाजे ही खुल जाएंगे। कई बातें ना मन में बहुत प्रश्न उठते हैं, और जैसे कोई भी मुरली लो, चाहे अव्यक्त मुरली चाहे साकार मुरली, वो जवाब उसमें आ जाता है। यही वंडर है, सचमुच यही वंडर है। अनुभव किया होगा, किया है ना अनुभव? जिन्होंने किया है हाथ उठाओ। हमने तो बहुत किया है। हाँ बिल्कुल, देखो सबने किया। ओम शांति। शिव भगवानो वाच सालिग्रामो प्रति। ये तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, शिव भगवानो वाच सालिग्रामो प्रति, ये कल्प में एक ही बार होता है। ये भी तुम जानते हो और कोई भी जान न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है, अभी तो फिर भी कम है, पहले तो बहुत विघ्न पड़ते थे, क्योंकि गलत फहमियां बहुत थी, बहुत गलत फहमियां भाई बहन बनाते हैं, जादू करते हैं, आंखों में सुरमा डालते हैं, ये दृष्टि में इनकी जादू है, लाल लाइट जलाते हैं, फिर हिप्नोटाइज कर देते, पता नहीं क्या क्या कहते थे, और भाई बहन बनाते फिर कहेंगे वहां तो भ्रष्टाचार है, ये पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो फिर बहुत रिपोर्ट्स बाबा के पास आती थी कि बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं, लोग आते भी थे पूछने के लिए ये क्या होता है यहाँ। तो बाबा तो और ही कहते थे कि बच्चे अगर ये ऐसे होता है तो फिर तुम्हारा और ही फायदा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होती है। एक मिसाल बाबा ने एक बार दिया था, कलकत्ता में बहुत कुछ हुआ, बहुत हंगामा हुआ, अगले दिन अखबार में आ गया, तो बाबा के पास ये न्यूज गई कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ है, हंगामा किया है। तो उस अखबार का नाम था विश्वामित्र, विश्वामित्र अखबार निकलती है कलकत्ता से। तो बाबा ने कहा देखो इस अखबार का नाम ही है विश्वामित्र, लेकिन सबसे बड़ा मित्र ये हमारा है। सबसे बड़ा मित्र ये हमारा है, विश्वामित्र तो कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा मित्र है, क्योंकि ये लोग पढ़ेंगे तो पूछेंगे, फिर आएंगे तो जरूर उससे बाबा का परिचय उनको आप देंगे, और आपके वहां यहाँ आते ही देखते अरे ये तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं, तो फिर बदल भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। असुरों ने वैसे भी दिखाते शास्त्रों में विघ्न डाले, ऋषि मुनि कैसे यज्ञ रचते थे करते थे तो असुर आके विघ्न डालते थे। तो ये है ही ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वो सब स्वाहा हो जाना है, फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, ये है विशेष और वाइसलेस का संगम। पुरुषोत्तम संगम युग विशेष विकारी और वाइसलेस निर्विकारी का संगम, जबकि चेंज होनी है, परिवर्तन होना है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, ये तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट्स समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, क्या कहते हैं रात दिन, बच्चे तुमको गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ, जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है। फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, पढ़ाई बंद हो जाएगी मना समझो, अभी घर जाना है, अभी पढ़ाई चल रही है, तो बाबा कहे फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, तो इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबर वार है, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। बच्चे कैसे हैं वो तो बाप दादा ही जानते हैं, नंबर वार है सब। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है, ऐसे नहीं कि सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती है। माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं। कौन होंगे पास विद ऑनर्स, जो माला के दाने बनने वाले होंगे। फिर प्रजा भी बनती है, तो जो विजयंती माला के दाने है वो सब पास विद ऑनर्स है ना, प्रजा वाले उस वो दाने नहीं बनते। फिर प्रजा भी बनती है, ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वो समझ थोड़ी सकते हैं, ऐसे जल्दी नहीं समझ सकते हैं, नई बातें हैं ना, तो समझ थोड़ी सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते उतना तुम नहीं। बाबा तो कितनी गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, जितना बाप समझाते उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आती आदि जो आती है उनको बाप ही जानते हैं, फलाना विकार में गिरा, ये हुआ। हाँ टीचर्स रिपोर्ट तो देती थी ना, बाबा को पत्र तो बहुत लिखती थी, फलाना विकार में गिरा, ये हुआ, नाम तो नहीं बता सकते। अब वो बहन तो नाम भी लिखती होगी बाबा को, बाबा ये फलाना ऐसे विकार में गिरा, पता तो चल ही जाता है, तो लेकिन बाबा थोड़ी बताएंगे उनका नाम, नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, हाँ छोड़ो इनके सामने भी मत जाओ, तो इसीलिए बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे। कितनी बातें होती है लेकिन सब थोड़ी बताई जा सकती है, नहीं तो उनको नफरत की दृष्टि से देखेंगे, सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे, सारी की कमाई चट हो जाती है। ये तो जिसने धक्का खाया है वो जाने या बाप जाने, कोई भूल की है बड़ी तो वो जाने और बाप जाने, ये बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, ये भी लिखते थे पत्र में, तुम कहते हो फलाना मिला उनको बहुत अच्छा समझाया, वो सेवा में मदद कर सकते हैं। ये कोई वीआईपी आया, बाबा हमने उनको ऐसे समझाया, बहुत अच्छा समझा, अभी वो मदद कर सकते हैं, बाबा को लिखते हैं, वो सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वो भी जब सम्मुख हो ना, अब बाबा के सामने आए तब तो पता चले कि ये सेवा करेगा या कर सकता है। समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, तब एग्जीबिशन की थी, गवर्नर को बुलाया था और सारा उसने बहुत अच्छी तरह समझा उस समय बॉम्बे में, तो समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वो थोड़ी किसको समझा सकेंगे, चलो उसने बहुत अच्छा समझा लेकिन वो थोड़ी किसी को समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे भी नहीं, कहेंगे अरे तुम क्या ब्रह्मा कुमारियों में गए, जादू लग गया क्या, तुम उनकी बातें सुनाते हो। लेकिन हमारी राष्ट्रपति डरती नहीं है। हमने देखा कितने प्रोग्राम्स में जाती है, बाबा के प्रोग्राम्स में, और कितना बेधड़क होके सुनाती है। तो क्योंकि इतना निश्चय है उसको, तो कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरों को थोड़ी समझा सकेंगे। चलो उसने समझा, पर वो फिर दूसरों को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि ये तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं, इस कांटों के जंगल को मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना, तो मंगलम भगवान विष्णु का अर्थ क्या है? बाबा बताते हैं, मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना, ये श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तो मंगलम भगवान विष्णु माना मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। मंगलम भगवान विष्णु, विष्णु आते हैं सृष्टि पर तो सारा जंगल मंगल हो जाता है। तो मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं, बाबा ने सबको देखा हुआ है, कैसे भक्ति मार्ग में सब किताबें हैं ना, कैसे विष्णु जी आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, मतलब बहुत कुछ बताते हैं। तो बाबा ने सबको देखा हुआ अनुभवी है ना, सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं बाबा। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनालिटी भी तो चाहिए ना, छोटे बच्चे में थोड़ी आएंगे, किसी यंग जवान के भी तन में थोड़ी आएंगे। तो पर्सनालिटी माना इतना अनुभवी हो वो, तो बाबा कहते आएंगे तो उनकी पर्सनालिटी भी चाहिए ना, तब कहेंगे, तब कहते हैं। क्या है उनकी पर्सनालिटी? बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, इस दुनिया का वो बहुत अनुभवी है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। सब प्रकार का अनुभव था, बिजनेस का भी अनुभव, परिवार का भी अनुभव, बच्चे पोते धोते सब थे ना, तो अनुभवी आत्मा थी। तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वो भी साधारण, कोई बहुत वेशभूषा तो कोई बहुत बड़ी नहीं, वो भी साधारण। पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, कोई राजा हो या राजा रॉयल फैमिली का हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है, इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े कि ये राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है, ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं? तो राजधानी में ये सब पद है, तो कोई राजा कोई रानी कोई प्रजा कोई शाहूकार ये सब बनते हैं यहाँ से। तो ये सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। तो बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं, भगवान आकर समझाते हैं। अब देखो, भगवान आकर समझाते हैं तो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। अरे भगवान कहता है पवित्र बनो, तो भी कितने थोड़े बाबा के बच्चे बनते हैं, पवित्र बनते हैं। ये भी समझने में टाइम चाहिए, क्यों पवित्र बनो बाबा कहते हैं, तो समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, फिर नहीं मानेंगे बाबा का, नहीं धारणा करेंगे तो सजाएं खाएंगे। सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं, कोई राजाई में तो आएंगे नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, पवित्र तो बनना ही है लेकिन बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, बाप को सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। भगवान का इतना बड़ा कर्तव्य है सबको रास्ता बताना, सबको दुखों से छुड़ाना, तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे? भगवान के लिए कहते हैं दुख भी तुम ही देते हो, सुख भी तुम ही देते हो। अरे भगवान तो दुख से छुड़ाते हैं, इतना सुख देते हैं, वो कैसे दुख देगा? तो वो फिर खुद कैसे किसको दुख देंगे? ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। तो जो भी संबंधी आदि हैं, अब ये तीसरी बात, पहले याद की बात थी, पढ़ाई की बात थी, तीसरी पवित्रता की बात थी, अभी चौथी बात, और फिर मीठा बनो, हाँ ये चौथी बात है। पांचवी बात, जो भी संबंधी आदि है उन सब से ममत्व तोड़ देना है। ये बहुत बड़ी बात है। पवित्र बनना भी सहज है, चलो याद करना भी सहज है, लेकिन सबसे मित्र संबंधियों से ममत्व तोड़ना, हाँ बाबा कहते हैं सबसे ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र, छोड़ना कुछ भी नहीं है, फंसना कहीं भी नहीं है, परंतु निमित्त मात्र। ये तो बुद्धि में है कि ये सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु ये ख्यालात भी किसको रहता नहीं, रहता ही नहीं है ये ख्यालात कि ये सब खत्म होना है। जो अनन्य बच्चे हैं वो समझते हैं, वो भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, माया की चक्री अंदर ही अंदर माया हलचल में लाती है, परेशान करती है। तो माया की चक्री बहुत चलती है, वो भी बड़ी बलवान है। भगवान को भी कहना पड़ता है कि माया बड़ी बलवान है, परंतु ये बातें और कोई को थोड़ी समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं कि यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है। आते ना ऑफिसर्स भी आते हैं, पहले तो बहुत ज्यादा ही थे, तो ये क्यों ऐसे आपकी रिपोर्ट्स, क्योंकि पवित्रता की बात थी, अब पवित्रता की बात थी तो रिपोर्ट्स आती थी। आजकल तो कई कानून बन गए हैं, इसीलिए किसको जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, किसी को मारपीट भी नहीं कर सकते, कानून है, तो इसीलिए अभी तो कोई करेगा भी नहीं ऐसे। तो यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, चलो ऑफिसर आया, उसने पूछताछ की और कहा नहीं नहीं ये संस्था तो बहुत अच्छी है, अब वो गया, उसकी ट्रांसफर हो गई, फिर दूसरा आया, फिर उसको रिपोर्ट आई, फिर वो आया पूछा, चलो ठीक है मान लिया, फिर ट्रांसफर हो गई, ऐसे ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। फिर कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी संस्था है, एक एक को फिर समझाओ तब फिर कहेंगे बड़ी अच्छी संस्था है। राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुई है, गोपनीय है, बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। अब ये छठी बात, पहले का बाबा ने मोह को छोड़ो, अभी हर्षित होना है। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, ये है नई दुनिया के मालिक, लक्ष्मी नारायण सामने बाबा के हैं, ये है नई दुनिया के मालिक, ये तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं, बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वो हमको पढ़ाते हैं, अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको ये नॉलेज मिलती है। इसलिए नॉलेज मिलती है अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए, ये नॉलेज बाप देते हैं, ये नॉलेज हमें मिलती है। आएंगे वही, कौन आएंगे इस वो नई दुनिया में, पहले तो यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी कौन आएंगे, जो ये यहाँ भी कौन आएंगे, वही आएंगे जिन्होंने कल्प कल्प राज्य किया है। कल्प पहले माफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ये माला बन रही है नंबरवार, सोचो कैसे माला बन रही है गुप्त रूप में, नंबर ये माला बन रही है नंबरवार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वो है हद की बातें, और तुमको मिलती है बेहद की बातें। हमारी स्कॉलरशिप बेहद की है, नई दुनिया में स्कॉलरशिप लेनी है ना, उच्च पद माना स्कॉलरशिप है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है बेहद की बातें, जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हैं। वास्तव में तो मदद अपनी को ही करनी है, भगवान को क्या मदद चाहिए हमारी। अगर नई दुनिया के लिए हम पवित्र बनते हैं तो भी हमको ही मदद है ना, भगवान तो राज्य करता ही नहीं है। तन मन धन से सेवा करते तो हमारा ही भाग्य बनता है, भगवान को तो बाबा को तो कोई चाहिए नहीं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है, पवित्र बनना है, सतो प्रधान थे फिर से बनना है जरूर, बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, लाचारी रूप से नहीं। हाँ बाबा कहते याद करो इसीलिए याद कर रहे, नहीं बहुत रुचि से याद करना है। परंतु माया छोड़ती नहीं, माया छोड़ती नहीं, अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं, कई तो खुद ही लिखते हैं, कई तो फिर चलो टीचर को बताया भी तो फिर टीचर भी लिख देती है बाबा को, बाबा ऐसे ऐसे ये था ये है। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं, तो बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, पांच विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो, क्या समझते हैं बाप को याद करने से, कि हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं, भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं है, ये तो पढ़ाई है। तो बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, बनना तो है तो याद के बल से बनेंगे, और याद कैसे ठहरेगी जब पढ़ाई पढ़ेंगे। तुम पावन कैसे बनेंगे, तुम पावन थे फिर बनना है, देवता पावन है ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। अभी पढ़ रहे हैं फिर भविष्य में सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है, कितनी मार्क्स लेंगे उस पर ही पद का आधार है, तो सारा मार्क्स के ऊपर आधार है। बुद्धि के मैदान युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं, ये भी बात है। युद्ध के मैदान में तो भाई रामचंद्र को हमेशा तीर कमान दिखाते हैं, तो युद्ध के मैदान में माया से लड़ते लड़ते वो आत्मा ने अगर शरीर छोड़ा तो फिर वो तीर कमान साथ में है। तो युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन क्या कर दिया, तीर कमान आदि दे दिया, है माया से युद्ध। अब वो माया से युद्ध को समझा नहीं पर तीर कमान दे दिया श्री राम को। तो उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी, त्रेता युग में श्री राम को तीर कमान दिया है, श्री राम लक्ष्मण सबको तीर कमान दिया है, तो क्या वहां बाहुबल की लड़ाई होती थी जो तीर कमान आदि चलाए, ऐसी कोई बात तो है नहीं। चाहे वो सेमी स्वर्ग है त्रेता तो भी ऐसी बात तो नहीं है कि वहां तीर कमान चलाया। हाँ तीर कमान चलाना तब शुरू करते द्वापुर आता है, द्वापुर में तो तीर पहले तो तीर कमान ही होता, अभी तो इस जमाने में तो तीर कमान तो बहुत पुरानी चीज हो गई, पहले तो यही चलता था ना। तो जो तीर कमान आदि चलाए, अभी तो वो बाहुबल की लड़ाई थी क्या, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी, जो द्वापुर के बाद भी जो लड़ाइयां शुरू भी हुई तो भी पहले तो तीर कमान से ही लड़ाइयां होती थी ना। इस समय तक भी निशानियां हैं, इसीलिए तीर कमान दिखाते हैं। इस समय तक भी निशानियां हैं, कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं, तीर कमान चलाने में बड़े होशियार होते हैं, सब नहीं होते होशियार, बहुत तो तीरंदाजी करते हैं ना, बिल्कुल वो तीर उसी निशाने पर पहुंचे, सब नहीं होते, बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसमें भी। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं, अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, कोई तीर कमान चलाने की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है जिनसे हम ये पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है, ये सब पुराना है। अर्जुन को भी तो यही कहा ना, ममत्व तोड़ो, इन सबको मारो। तो मारो माना कोई तीर कमान चला के नहीं मारो, बुद्धि से मारो। तो इन सब बाबा कहते हैं सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है, ये सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एजेड भारत था, कितना नाम मशहूर था भारत, गोल्डन एजेड सोने की चिड़िया, कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया, योग भी प्राचीन योग भारत का मशहूर है, परंतु बाबा कहते कब और किसने सिखाया ये किसको पता नहीं। जब तक खुद ना आकर समझाए, जब वो खुद आए भगवान तब आकर समझाएगा कि ये कैसे प्राचीन योग कौन सिखाता है और कब सिखाते हैं। जब तक खुद ना आकर समझाए ये है नई चीज, कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा। वैसे देखा जाए कुछ भी नया नहीं है, सब कल्प कल्प जो रिपीट हुआ है वही हो रहा है रिपीट, नया नहीं है, पर फिर भी नए से नया है क्योंकि याद तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते वही फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क तो पड़ नहीं सकता। तो बाप कहते हैं अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है, नहीं होंगे अपवित्र। एक जन्म पवित्र रहो तो 21 जन्म आप अपवित्र नहीं होंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़े पढ़ते हैं। मुरली में कितनी रसदार बातें आती है, कितनी गुह्य बातें आती है, कितनी आनंद दिलाती आत्मा को, लेकिन बाबा कहते सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं, रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने लिए, आते हैं कोर्स करते हैं, मुरली तक आते हैं, मुरली भी सुनते हैं, फिर क्या होता है आते हैं पढ़ने लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। गए थोड़े दिन, आए एक महीना तक चले, फिर ओम शांति, गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वो फिर अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। जो चलते हैं फिर वो अनुभव सुनाते हैं कि मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया, तो हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, हम कैसे आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। पवित्रता की प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करना माना बहुत बड़ी चीज है, ऐसे नहीं कि प्रतिज्ञा करो फिर रोज प्रतिज्ञा करो, ऐसे नहीं होता है। प्रतिज्ञा की माना आजीवन। तो बाबा कहते तो की कमाई अगर पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी, फिर वो अंदर में खाता रहेगा। मैंने प्रतिज्ञा की और ये प्रतिज्ञा तोड़ी मैंने, तो अंदर में खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो, वो शक्ति खत्म हो जाएगी। तो किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो, तो मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। बाबा इसलिए पूछते हैं विकार की बात। तुम बच्चों को ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ, तुम हो स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स, पर कौन से स्टूडेंट्स, गॉडली स्टूडेंट्स। तुमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के तुम स्टूडेंट हो, चढ़ाओ नशा, भगवान के हम स्टूडेंट्स हैं। ऐसी ऊंच से ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली न सुनी तो फिर एब्सेंट पड़ जाती, एब्सेंट, मुरली नहीं सुनना माना एब्सेंट हो गए। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। तो बाबा सबके लिए कहेंगे, महारथी भी कई ऐसे होंगे जो समझते मैं तो सबको जानता हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, इसलिए मुरली पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। वो समझते हैं, जो मिस करते हैं मुरली, वो क्या समझते हैं, हम तो सबको जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो ना ऐसे है, तो मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, अरे एब्सेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रेजेंस भी देखी जाती है स्कूल में, रजिस्टर में प्रेजेंट मार्क कितनी डाली वो भी देखा जाता है, और वो देखा जाता है तो हमारे फाइनल पेपर की रिजल्ट में भी वो मार्क्स गिनती होती है। तो बाबा कहते हैं, अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं, वो समझते हैं हम तो सबको जानते हैं। बाबा इस पर बहुत ध्यान खिंचवाते थे। कई बच्चे आते थे ना, अब ट्रेन से आए हैं, सुबह की मुरली जो बाबा ने चलाई वो तो मिस कर दी, वो तो सुनी नहीं होगी ना, तो फिर अब नहा धो करके सीधा बाबा से मिलने आते थे, तो बाबा सबसे पहले यही पूछते थे, आज की मुरली सुनी, नहीं बाबा, फिर दीदी पहले पकड़ती थी उनको, दीदी उनसे कहती थी, अच्छा मैं आपके साथ बैडमिंटन खेल खेलूंगी, तो उसी दिन की मुरली की के प्रश्न निकालती थी दीदी, और वो पूछती थी और वो फेल हो जाती, क्योंकि जो मुरली का उत्तर होगा वो तो बता नहीं सकते, तो फेल, तो दीदी कहती थी फेल फेल, हंसाती थी। तो बाबा कहते हैं, तो फिर पहले बाबा कहते थे पहले मुरली पढ़ के आओ, तो वो प्रश्न उत्तर निकलते थे, वो मुरली पहले पढ़ के आते थे, फिर बाबा से मिलते थे। तो मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, कि कहते अरे एब्सेंट पड़ जाएंगी, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं, रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी, नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है, एब्सेंट तो कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं एब्सेंट होना चाहिए। यहाँ वहां से ढूंढ कर भी, कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, अरे भगवान, हम भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा, क्या याद रहेगा, पिछाड़ी में यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही याद रहेगा। परंतु अभी समझाना पड़ता है, पिछाड़ी की ये अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। आत्मा शिव बाबा की याद में शरीर छोड़े और कुछ याद न आए, तो बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो, कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो, हर एक अपना समझ सकता है मैं कितना पवित्र बना हूँ, कितना याद करता हूँ। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा, जो इम्प्योर होगा पवित्र नहीं होगा उसको बल, उसको शक्ति जरूर कम मिलेगी। मुख्य 8 रत्न ही है जो पास विद ऑनर हो जाते हैं, वो कुछ भी सजा नहीं खाते, केवल 8। ये बड़ी महीन बातें हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई है, स्वप्न में भी नहीं होगा किसी को, स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते। ज्ञान में आने से पहले किसी को स्वप्न में भी कभी आया क्या हम देवता बन सकते हैं, कभी नहीं है। बाप को को याद करने से ही तुम पद्मा पदम पति भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वो धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। इतना धन कमाते हैं कदम कदम में पद्मों की कमाई, वो दुनिया में चाहे कितना भी धंधा करते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन इस कमाई के आगे वो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहे इसके सामने तो वो धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है, कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है। फिर भी करना तो पड़ता ही है, अब कमाई तो करनी है ना, आजीविका के लिए धन तो कमाना ही होगा, नहीं तो कहाँ से खाएंगे, इसीलिए वो तो करना ही है। बाबा कहते हैं फिर भी करना तो पड़ता है ना, वो अंत में काम नहीं आने वाला है लेकिन करना तो पड़ता है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए, ये काम सब कुछ आने वाला नहीं है, अंत में केवल बाबा की याद आएगी, लेकिन फिर भी कमाई तो करनी है ना, बैंक बैलेंस भी रखना है, जरूर रखनी है, कभी भी आफत आती है तो जरूरत पड़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, शिव बाबा के लिए भी यज्ञ की सेवा के लिए भी अलग निकालना होता, परंतु अगर यज्ञ में देते हैं तो इससे ये नहीं समझो कि मैं तो यज्ञ में बहुत करता हूँ, मैं तो बहुत धन से सेवा करता हूँ, हम शिव बाबा को देते हैं ऐसे कभी नहीं समझो। अरे तुम तो पद्मा पद्म पति बनते हो, कितना भाग्य तुम्हारा उज्जवल होता है, देते क्या हो, कुछ भी नहीं, पद्मा पद्म पति बनते हो। देने का ख्याल आया कि मैं तो बहुत देता हूँ, ये देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है, वो रिटर्न जो पद्मा पद्म मिलना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ख्याल आ गया मैं तो यज्ञ में देता हूँ, तो देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, किस लिए, किस लिए दान पुण्य करते हैं, लेने के लिए ना, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो, ऐसे ना गीता आई है, तो भगवान के नाम पर कुछ देते हैं तो बाबा कहते हैं वो तो कितना पदम गुना देता है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, वो देना थोड़े हुआ, एक का 100 गुना 1,00,000 गुना लेना, ये देना थोड़ी हुआ, भगवान तो दाता है ना, दूसरे जन्म में कितना देते हैं, भक्ति मार्ग में भी जो दान करते हैं अच्छे कार्य के लिए, तो अगले जन्म में धनवान के घर में जन्म लेते हैं ना, तो ये भी ड्रामा में नोंद है कि दूसरे जन्म में कितना मिलता है उनको, ये भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो, वो अल्पकाल का सुख, हद का सुख, और बेहद के बाप से बेहद का सुख। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है, भगवान पढ़ाते हैं इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरा, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते काम काज करते एक बाप की याद में रहना है। वरदान, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी हमारी क्या है, प्रसन्नता, तो प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। हाँ, सब उनको सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ ये संतुष्ट आत्मा है तो वो प्रसन्न रहता है, तो ये भी उनको सर्टिफिकेट मिलता है। वो सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। यहाँ प्रसन्न चित रहते हैं तो भविष्य में द्वापर युग में भी कैसे गायन और पूजन योग्य हो जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की सहारे की हिम्मत के पंखों की उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है और कोई भक्त बन जाते हैं, कोई स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, इससे कोई द्वापर के बाद भक्त बन जाते हैं। स्लोगन, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है। कैसे प्राप्त करेंगे भगवान से वरदान? बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाबा से दिल का स्नेह हो तो बाबा से वरदान मिल जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारा कर्म योगी जीवन, कर्म योग पर ही है सब कुछ आज, तो कर्म योगी बनो। आज 3 तारीख है। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, स्वतः ही चलते हैं कर्म, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्म इंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथों का अपना कार्य है, टांगों का अपना कार्य है, आंखों का अपना कार्य, अनादि। बाबा कहते हैं अनादि आदि अनादि अपना का अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पांव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य है बाप को याद करना। ब्राह्मण जीवन में बुद्धि का निजी कार्य या जन्म का कार्य है बाप को याद करना। जीवन का जो निजी कार्य होता है वो नेचुरल और सहज हो जाता है, तो याद भी नेचुरल और सहज है, निजी कार्य है। तो अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करो, अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, कल से आप सभी को ये न्यूज़ तो मिली होगी, हमारी अंबाला सिटी की सरोज बहन, बाप दादा की अति स्नेही सरोज दीदी, जो अंबाला सिटी में अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रही थी। अंबाला सिटी है, अंबाला कैंट है, तो अंबाला कैंट में तो कृष्णा बहन रहती थी, उसने भी कुछ समय पहले शरीर छोड़ा, और अंबाला सिटी में अपनी सरोज दीदी रहती थी, तो वो समर्पित रूप से अंबाला सिटी में सेवा दे रही थी। सरोज दीदी जी ने कल 2 तारीख को सवेरे 10:15 बजे अपना पुराना चोला छोड़ा, बाबा की गोद में गई। वो 1967 से 1967 से ईश्वरीय यज्ञ सेवा में समर्पित हुई थी। बाबा मम्मा की उन्होंने पालना ली थी, वो 74 वर्ष की थी, बहुत सेवा करती थी, लेकिन कुछ समय से बीमार थी तो अंबाला सिटी में रहती थी। काफी समय से मधुबन में भी नहीं आई थी, लेकिन आज उनके शरीर का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन कल शरीर छोड़ा। तो हम सब 3 मिनट उस आत्मा को योगदान देंगे। अच्छा।